फिर भी वो उसके जीवित रहने से आप लोगों को बहुत खतरा है, तो उसके वध का मैं उपाय बता दिए, आप लोग जाइए। तब यहाँ आप 10वां अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग यहाँ आ रहे थे तो हरिलीला प्रभु 610 रोड नंबर बताते, तो हम भी 610 पर चल रहे हैं। छठा स्कंध है और अध्याय 10वां है, 610। श्री बादरायणी रुवाच, श्री सुखदेव जी को बादरायणी कहते हैं। भगवान वेदव्यास देव का नाम है बादरायण और बादरायण के पुत्र को बादरायणी कहते हैं। कहीं कहीं पाठ भेद है, श्री शुक उवाच भी है। श्री बादरायणी ने कहा कि इंद्रम एवं समादिश्य भगवान विश्व भावन पश्यताम अनिमेषाणाम तत्रैव अंतर दधे हरि। तो भगवान विश्व भावन विश्व का पालन करने वाले श्री हरि विष्णु देवताओं इंद्र को एवं समादिश्य सम आदिश्य सम्यक आदेश देकर समझा बुझा करके, जाना तो ऐसे मांगना, ऐसे प्रणाम करना, उनको ये करना वैसे करना, और इस तरह से वृत्रासुर का वध होगा। इसको कहते हैं समादेश। सम का अर्थ सम्यक, आदेश का अर्थ है सुझाव, आर्डर। इंद्रम एवं समादेश, इस प्रकार इंद्र को सम्यक आदेश देकर तत्रैव अंतर दधे हरि, वहीं पर अंतरहित हो गए, वे कहीं गए नहीं। ऐसा नहीं कि जाते समय ऐसे हाथ कर रहे हो, ठीक है मैं चल रहा हूं, कह नहीं, वहीं तत्र एव अंतर दधे, वहीं पर अंतरहित हो गए। ये भगवान की शक्ति है, देवता तक उनकी कृपा, भगवान की कृपा से ही देवता भगवान का दर्शन कर पाते हैं, और भगवान जब चाहे तो अपने को छिपा देते हैं। पश्यताम अनिमेषाणाम, देवताओं को अनिमेष कहा जाता है, उनकी आंखों की पलक नहीं गिरती है, देवताओं की विशेषता है, वे धरती पर पैर नहीं रखते हैं और उनकी आंखों की पलक नहीं गिरती है, इसलिए उनको अनिमेष कहते हैं। तो अनिमेष, जिनकी आंखों पर निमेश नहीं है, पलक नहीं है, वे देवता एक टक देखते रहे। एक टक क्या होता है, एक टक है ही जब पलक गिर जाता है इसको दो टक कहते हैं। देवताओं पर क्या आंख पर पलक है ही नहीं, वो सब देख रहे थे आश्चर्यचकित होकर, भगवान के रूप तेज सबको देख रहे थे, देखते देखते वहीं भगवान अंतरित। पश्यताम अनिमेषाणाम तत्रैव अंतर दधे हरि, हरि उनके मन को नेत्र को चुरा कर भगवान हरि अपने सौंदर्य से वहीं अंतरित हो गए। तो भगवान हरि की एक विशेषता बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, विश्व भावन। भावन का अर्थ होता है पालक, जन्मदाता, संपूर्ण विश्व के पालक और जन्मदाता भगवान हैं। तो उन्होंने सोचा कि वृत्रासुर का जीवित रहना विश्व के पालन में गड़बड़ी पैदा करेगा, भले वो मेरा भक्त है लेकिन उसका वध होना चाहिए। विश्व भावना शब्द का ये अर्थ, कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं इस संसार में कि उनको मारना जरूरी होता है, उनके जीवित रहने से और लोगों को कष्ट होता है। तो विश्व भावन भगवान हरि इंद्रम एवं समादिश्य अनिमेषाणाम पश्यताम तत्र एव अंतर्दध है, वही अंतरहित हो। संस्कृत भाषा बहुत कड़ी भाषा नहीं है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते इसीलिए कि सुनने को मिलता नहीं है, पढ़ने को मिलता नहीं है। जो भाषा लगातार व्यवहार में आती है व्यक्ति उसी को जानता है, परंतु हमारा समस्त वैदिक साहित्य संस्कृत में है, इसलिए संस्कृत समझने का प्रयास करना चाहिए, बहुत सरल है। तब इंद्र को भगवान ने आदेश दिया ऐसे जाओ दधीचि ऋषि के पास, तब तथा भी याचितो देव ऋषि राथर्वण महान मोद मानवाचेदम प्रहसन्निव भारत। श्रील सुखदेव स्वामी संबोधन करते हैं परीक्षित को, हे भारत, हे भरत वंशी अर्जुन, हे परीक्षित भारत, भगवान ने गीता में भी अर्जुन को बार बार भारत कहा है, भरत वंश में जो उत्पन्न हुआ है उसको भारत कहते हैं। हे भारत, तथा अभियाचित महान अथर्वण ऋषि मोदमान वाचेदम प्रहसन निव। तो जब इंद्र ने ठीक ठीक भगवान जैसे सिखाए थे वैसे जाकर के प्रणाम किए और ठीक भगवान से पूछे थे कि क्या क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, पहले क्या बोलना चाहिए, तो भगवान ने एक एक बात सिखाया था कि ऐसे बोलना ऐसे करना। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तथा अभियाचित, जथा भगवता प्रोक्त तथा इंद्रेण अथर्वण ऋषि याचित, जैसे भगवान ने सिखाया था वैसे जाकर मांगे। पहले दधीची मुनि ने देवताओं से पूछा, कहा कि अहो मैं भाग्य, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, आप सब देवता हमारे आश्रम पर पधारे हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप निसंकोच हमको बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो इंद्र ने भगवान के सिखाए हुए तरीके से कहा कि हम आपके देह को लेकर इसको काट कर अस्त्र बनाना चाहते। अरे बाप रे बाप, कोई किसी के पास जाए और कहे कि हम आपको काट कर एक हथियार बनाना चाहते हैं, चाहे किचन में कुछ पकाना चाहते हैं, कौन स्वीकार करेगा? देह में कितनी ममता है, कितनी आसक्ति है जीव की, और दधीची से जाकर ऐसे कहा गया। तो इंद्र की प्रार्थना से दधीची ऋषि मोदमान बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए मन में, कहा मेरा ये अधम देह देवताओं का हित करेगा, मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य। आखिर देह एक दिन चला ही जाता है, इसको जला दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है या दूसरे जीव खा जाते हैं, और यह देह यदि देवताओं के काम में आए तो अहो मैं भाग्यम, मेरा बहुत बड़ा भाग्य। मन में बहुत प्रसन्न हुए, परंतु देवताओं के मुख से धर्म का उपदेश सुनने के लिए कि दूसरे जीव भी सीखें, इसके लिए उन्होंने प्रतिकार करते हुए से कहा, प्रहसन्न हो, देवताओं का उपहास करते हुए कहा। दधीची ऋषि ने कहा, अपि बृंदारका जोयम न जानी था शरीर नाम संस्थायाम जो स्तभी द्रोह दुस्सह चेतना पह। हे बृंदारक, हे देवताओं, देवता लोग समूह में रहते हैं इसीलिए उनको बृंदारक कहा जाता है, और बृंदारक का एक अर्थ होता है सब कुछ जानने वाले, दूसरे के सुख दुख को जो जानते हैं उनको बृंदारक देवता कहते हैं। दधीची मुनि ने कहा प्रसन्न मन से, लेकिन ऊपर से ऐसा लगा कि वो देना नहीं चाहते हैं, प्रतिकार से कर रहे हैं। कहा कि हे देवताओं, आप लोगों को मालूम नहीं है क्या, आप लोगों को मालूम नहीं है कि शरीर त्यागने में, मरने में प्राणियों को कितना कष्ट होता है? दुस्सह चेतना पह, व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, सह नहीं पाता है शरीर का वियोग, असमय में किसी को मारा जाए, काटा जाए, शरीर छोड़ने को बाध्य किया जाए, कितना कष्ट होता है, जीव छटपटाने लगता है जब मृत्यु का समय आता है। इसको दुस्सह और चेतना पह, चेतना खत्म हो जाती है, जीव मूर्छित हो जाता है और सहन नहीं कर सकता, इनटॉलरेबल होता है, क्या आप लोग नहीं जानते हैं कैसे आप लोगों ने साहस किया मेरा देह मांगने का? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मैं तो समझता था कि हमारे आश्रम पर देवता आए हैं, मैं नहीं जानता था कि इतनी संख्या में बाघ आकर के खड़े हैं जो हमारे देह को खाना चाहते हैं। आप लोग कैसे मांगने का साहस किए, कौन देह दे सकता है? देवता तो सब हक्का वक्का हो गए, अरे भगवान जिसकी प्रशंसा कर रहे थे और कहे कि वो मांगने पर दे देंगे। दधीची मुनि कहते हैं जिजी विष्णुणाम जीवा नाम आत्मा प्रेष्ठ ही है पिता क उत्साह तम दातुम भिक्ष माणा है विष्णु। प्रत्येक जीव के लिए, प्राणियों के लिए शरीर ही सबसे प्रिय वस्तु है, सबसे प्रिय शरीर है। प्रेष्ठ यह इप्सित, सबसे अधिक जिस वस्तु की आदमी कामना करता है वो है शरीर की सुरक्षा, और शरीर ही, देह ही सबको सबसे ज्यादा प्रिय है। किसी भी तरह से व्यक्ति अपने शरीर का पोषण करना चाहता है। आप लोग कैसे मांगे, कौन दे सकता है? देवताओं ने कहा हम लोग नहीं आ रहे थे आपके पास, लेकिन भगवान विष्णु ने भेजा। यही समझिए कि विष्णु अस्मन मुखे न याचते, भगवान ही मांग रहे हैं आपसे। केवल मुंह हम लोगों का है केवल माउथ हमारा है, बाकी आप यही समझिए कि विष्णु हमारे मुख से मांग रहे हैं। तब दधीचि मुनि कहते हाँ भिक्ष माणा है विष्णवे, मैं मानता हूं कि विष्णु ने ही सबको देह दिया है, शरीर दिया है प्रत्येक जीव को, तो भगवान ने दिया है, भोजन दिया है, भोग दिया है, शरीर दिया है। लेकिन ऐसे भगवान डायरेक्ट आकर के, साक्षात आकर के अगर किसी से मांगे कि शरीर दो तो कौन देगा? भगवान को भी नहीं देगा, कौन देगा? भिक्ष माणा है विष्णवे, यदि विष्णु भीख मांगे कि अपना देह दे दो तो नहीं दे, जबकि वही देह दिए हैं प्राणी को ठीक। आप लोग कहते हैं कि आप यही समझिए कि हमारे मुख से विष्णु मांग रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कौन देगा? हम तो ऐसा नहीं कर सकते। भीतर से तो प्रसन्न थे, देना चाहते थे, लेकिन ऊपर से कह रहे थे। इस संसार में और किसी को मान लीजिए कोई नहीं दे सकता है, लेकिन भगवान को तो सर्वस्व देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है। तो दीय वस्तु गोविंद तु भीमेव समान पाए, सब कुछ वास्तव में कृष्ण का दिया हुआ है, देह मन बुद्धि धन घर स्वजन जो कुछ भी एक जीव के साथ है, ईशावास्यमिदम सर्वम, सब कुछ कृष्ण का दिया हुआ है। इसीलिए कृष्ण की सेवा में इस देह को लगा देना चाहिए, कृष्ण की सेवा में धन खर्च करना चाहिए, कृष्ण की सेवा में स्वजनों को लगाना चाहिए, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, भाई को, सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि उनका दिया हुआ है। पर दधीचि मुनि यह कह रहे हैं कि प्राणी को शरीर इतना प्रिय है कि यदि भगवान भी आकर के मांगे कि ये दे दो देह, तो क उत्साहित तम दत्त, देने की बात तो दूर है, मन में कोई उत्साह भी नहीं कर सकता है देने का, सोच भी नहीं सकता कि इस देह को देंगे। अरे देह का कोई देगा? विष्णु के आगे मस्तक झुकाना कठिन होता है, देह क्या देगा कोई? कई बार हम लोग कहते हैं सष्टांग प्रणाम कीजिए, सष्टांग प्रणाम कीजिए, तो शरीर को सुलाना भगवान के सामने कितने लोगों के लिए पहाड़ हो जाता है। और जबकि घर में बेड पर वो सोते हैं कई घंटा, परंतु भगवान के सामने पैर पसार कर या हाथ आगे करके प्रणाम करने में नानी मर जाती माम नमस्कार भगवान कहते ये देह मुझे अर्पण करो, प्रणाम करना भी एक अर्पण करना है देह। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिन तु अपदे नंद किशोर। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हे कृष्ण, हे नंद महाराज के पुत्र, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरा मन है, बुद्धि है, देह है, गेह है, गेह का अर्थ है हमारी पत्नी बच्चे, जो कुछ भी धन आदि है सब मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिन तुआ पद नंद किशोर, आपके चरणों में अर्पित किया, और जो भोजन बनावे उसको अर्पण करें, शरीर अर्पण करें, वचन अर्पण करें। यदि भगवान ने बोलने की शक्ति दिया है तो उनके विषय में ही बोलना चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दधीचि मुनि कहते हैं भिक्ष माणाय विष्णवे, यदि विष्णु भी आ करके सचमुच में गिड़गिड़ा कर मांगने लगे तब भी कोई नहीं देह देगा, जबकि वही दिए हैं देह सबको। आप लोग कैसे मांगे? तब देवता लोग कहे आपस में एक दूसरे पर देख करके, देखो भगवान जिसकी प्रशंसा कर रहे थे ओ देवा उच्च किम तद्दुस्तेजम ब्रह्मन् पुंसाम भूतानुकंपिनाम। श्री देवताओं ने कहा यह तो ठीक है, आप कहते हैं कि प्राणियों को देह बहुत प्रिय है, लेकिन आप जैसे भक्त भी देह में ही इतना आसक्त रहे आश्चर्य होता है। देवता भी तो खूब कमाल से बोलते हैं, हे ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, भौतिक प्लेटफार्म से ऊपर है उनको ब्रह्म ब्राह्मण कहते हैं, हे ब्राह्मण आप जैसे व्यक्ति के लिए क्या दुस्त्यज है? क्या आप देह को आत्मा मान रहे हैं? आप देह को बचाना चाहते, अभी भी आपकी देह में आसक्ति रह गई? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा भक्त और अभी जीना चाहे इस शरीर में, जबकि ये पोशाक की तरह है। तो आप जैसे जो पहुंचे हुए महात्मा हैं, उनके लिए क्या दुस्त्यज है? वे क्या नहीं दे सकते हैं? क्या नहीं त्याग सकते हैं? भूतानुकंपिनाम, आप जैसे जो महान है, प्राणियों पर अनुकंपा करते रहते हैं, वे प्राणियों के हित के लिए भवत विधान महता, आप जैसे महात्माओं के लिए क्या दुस्त्यज? आपकी महिमा बड़े बड़े लोग गाते हैं, यहां तक साक्षात भगवान भी अपने मुखारबिंद से आपकी बड़ाई कर रहे थे, और हम आपके आश्रम पर आकर देखे कि ये भी सामान्य जनता जैसे देह में ही आसक्त रहा। ये देवता लोग बोल रहे हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि आपकी भी देह में ऐसी आसक्ति रह गई। सबकी चेतना भिन्न भिन्न होती है, तो एक भक्त की चेतना जो इतना दिन भजन किया और वो अभी दूसरे के समान देह में आसक्त रह जाए, तो भजन का फिर क्या परिणाम हुआ? ये धर्म का उपदेश है वास्तव में। प्रकारांतर से देवताओं के मुख से धर्म का उपदेश है कि जो महान हैं, देह से ऊपर उठ चुके हैं, देह को पराया समझ चुके हैं, आत्मा से भिन्न समझते हैं, वो देह में बहुत लिपटे नहीं रहते हैं, देह के सुख दुख पर बहुत विचार नहीं करते हैं, आत्मा के का हित करते हैं। तो पूर्ण श्लोकेभ्य कर्मणाम, जिनकी कीर्ति महान है, ऐसे बड़े बड़े लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, और यहां तक कि पूर्ण श्लोक भगवान भी आपकी प्रशंसा करते हैं, तो आप जैसे ऋषि के लिए, भक्त के लिए क्या दुस्त्यज? आप ठीक कहते हैं कि प्राणियों को देह बहुत प्रिय है, लेकिन किसको देह प्रिय है? जो माया में पड़े हुए हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं, वो देह को ही सर्वस्व मान करके देह के सुख स्वच्छंद के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो आप भी क्या अन्य प्राणियों जैसा देह में ही रह गए? आपको देह प्रिय है? नूनम स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम, यदि वेद न याचे तो नेति नह जदीश्वर। हम तो समझते थे कि आप महान व्यक्ति हैं, हम लोगों से ऊपर के हैं, लेकिन जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं, कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। हम रो रहे हैं जीने के लिए और आप भी अभी कर्पण दिखा रहे हैं जीने के लिए। इतना वृद्ध हो गया है फिर भी जीने से आपका मन नहीं भरा। और अपने तरफ देख करके और ऋषि दधीची के प्रति देख कर कहते हैं कि नूनम स्वार्थ परो लोक, निश्चित हुआ। नूनम का अर्थ निश्चित ही, सभी व्यक्ति संसार में अपने स्वार्थ के फेरे में पड़े, परमार्थ करने वाला कोई नहीं, दूसरे का हित करने वाला कोई नहीं, सब स्वार्थी। न वेद पर संकटम, स्वार्थी आदमी एक दूसरे का संकट नहीं समझता। देवताओं के कहने का आशय था कि हम नहीं जानते थे आपका संकट, कि आपको देह देने में इतना कष्ट होगा,